ओम शांति। तो यहाँ अनेक प्रकार की सीरीज चल रही है, एक क्वेश्चन आंसर सीरीज है जो कभी बीच बीच में रेस्ट ले लेती है। आज क्वेश्चन 67 है, तो हम देखेंगे उस प्रश्न का बाबा ने जो उत्तर दिया है और हम कैसे उसका विस्तार करें। प्रश्न है, जो सदा उड़ते पंछी होंगे उनकी निशानी क्या होगी? जो सदा उड़ते पंछी होंगे उनकी क्या निशानी होगी? वो नीचे नहीं आएंगे, उड़ते समय उड़ते रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। ऐसा ही बोला। और हाँ जी, लाइट होंगे, हल्के होंगे। और सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। और कौन उड़ सकता है? बेहद में रहेंगे, निर्बंधन होंगे, जिनके पंख चिपके नहीं होंगे, ठीक ठाक पंख होंगे, कमजोर पंख नहीं होंगे, और डाली पर चिपके नहीं रहेंगे, न्यारे और प्यारे रहेंगे। और उड़ते पंछी कैसे होंगे? सदा खुश रहेंगे और नष्ट मोह होंगे। अगर मोह है, आज के प्रधान भी है ना, कौन सी प्रवृत्ति से लगाव है तो नष्ट मोह नहीं बनेंगे। चार प्रकार की प्रवृत्तियां, कौन सी? स्व की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, इन सबसे ऊपर। तो प्रश्न यह है, जो सदा उड़ते पंछी होंगे उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है बाबा के शब्दों में, वे चक्रवर्ती होंगे, ऑल राउंड पार्टधारी होंगे, उड़ती कला वाले ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा हो वहां पहुंच जाएंगे और हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जैसे बाप ऑलराउंड पार्टधारी है, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते। ऐसी उड़ती कला वाले जिस समय जो सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे, इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। उसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। ऑलराउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? हरफन मौला। ये शब्द वास्तव में क्रिकेट में यूज आता है, बाकी अदर दूसरी जगह कम आता है। तो बाबा यहां बता रहे हैं कि ऑलराउंड उड़ता पंछी कैसे बनना है। तो हम सेवा के क्षेत्र में, क्योंकि हम सबको सेवा के क्षेत्र में तो जाना ही पड़ता है, सबको अनेक प्रकार के पार्ट बजाने पड़ते हैं, चाहे सेवा केंद्र में है, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे मधुबन में है। भले एक सेवा कोई मिलती है, लेकिन फिर भी समय पर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो अनेक प्रकार की सेवाओं की जिम्मेवारियां भी उनको सौंपी जाती हैं। तो उन जिम्मेवारियों पर खरा उतरने के लिए बाबा कहते हैं ऑलराउंड पार्टधारी, उड़ता पंछी कैसे बने। तो उड़ता पंछी बनने के लिए कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए हमारे में, और कौन कौन से सेवाओं के क्षेत्र में ऐसे साधन हैं जिनको हम किस तरीके से यूज करें, कैसे हमको सफलता मिले, किस समय उनकी कोई समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को कैसे पार करें, कैसे उमंग सा कायम रहे, तो ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेगी। तो बाबा ने इसमें पहले बताया ऑलराउंड जो होंगे वो चक्रवर्ती होंगे, किसी भी प्रकार की सेवा में वो एडजस्ट हो जाएंगे, है ना। यहाँ भी मधुबन में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो सेवा में कहीं भी एडजस्ट होते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, जब बोलो नींद में भी उठ पड़ के चल पड़ेंगे। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, एकदम निर्माण चित, बड़े छुपे रुस्तम हैं, प्रत्यक्ष भी हैं, छुपे हुए भी हैं। तो जो ऑलराउंड पार्टधारी है, देखेंगे निर्बंधन, निर्बंधन अर्थात जहां हमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, बंधन चाहे स्थूल में है चाहे सूक्ष्म में। जब तक हमने अपने अनेक प्रकार के बंधनों में जीवन को बांध के रखा है, तब तक हम सही तरीके से या शत प्रतिशत सेवा में सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे, चाहे वो स्थूल सेवा है चाहे वो सूक्ष्म सेवा है, है ना। सूक्ष्म सेवा, स्थूल सेवा में फिर भी हम कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म सेवा है वो भी हमारे मन के बंधन, मन को बांध के रखती है, अनेक प्रकार के मन के बंधन है जो उड़ने नहीं देती है। और बाबा कहते हैं अंत में तो यही सेवा जो कार्य करेगी, कौन सी? मनसा सेवा। तो मन को अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त करने के लिए स्वयं में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो हमें जांच करनी पड़ेगी ऐसे कौन कौन से बंधन हैं जिनसे हमने अपने मन को बांध के रखा है, कौन से ऐसे सूक्ष्म लगाव है, सूक्ष्म रसियां हैं जिनसे मन स्वतंत्र पंछी की तरफ विचरण कर सके, तो कौन कौन से ऐसे साधन हो सकते हैं जो मन उनमें से अच्छी तरह से सेवा कर सके या उन बंधनों से मुक्त हो सके। कैसी हमारी युक्तियां होनी चाहिए कि मन एक दो स्वतंत्र पंछी की तरह उड़ सके, या कौन सी ऐसी स्मृतियां रहें जिससे मन एकदम बेहद के वैरागी की तरह कार्य करे, स्वच्छंद विचरण कर सके, एकदम जो बाबा ने कहा मन मना भाव की स्थिति होगी तो मन के भावों को जान सकेंगे, क्योंकि ये अंतिम सेवा है। स्थूल रूप में सभी के पास नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम अपने मन को इनका इतना सशक्त कर ले, इतना शक्तिशाली बना ले ताकि वो सेवा में कहीं भी किसी भी समय पर कैसे भी जितना समय बाबा कहते जहां लगाना चाहो वहां लगा सकते हैं। तो ऐसे कैसे मन को शक्तिशाली बनाया जाए, क्या तरीके होंगे उसके, ताकि मन दूसरी चीजों से एकदम निर्बंधन हो जाए। वापस घर जाना है, कौन से घर में, बिना सामने खड़ा है, वापस घर जाना है, हाँ जी, अपने आप को मेहमान समझना है। मेहमान का किसी से कोई लगाव नहीं होता है, मेहमान टेम्परेरी होता है, थोड़े समय के लिए होता है और वो थोड़ा समय नहीं लेके जाता है वापस, और मेहमान जहां रहता है वहां उसको स्मृति रहती है कि मुझे वापस घर जाना है, लौटना है, मैं तो यहां टेम्परेरी हूं, और वहां जितना समय रहता है तो उसकी वहां इमेज अच्छी इमेज बनी रहे उसके लिए वो अपना ध्यान रखता है। वहां की चीज से उसका कोई लगाव नहीं होता, कोई अटैचमेंट नहीं होती, मोह नहीं होता है, और उन चीजों को जो यूज करता है तो वहां भी यूज भी तरीके से करेगा, ऐसे नहीं ऐसे वैसे कर देगा वो, और व्यवस्थित तरीके से रहेगा, और ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा जो सबके मन में कुछ की ऐसी वैसी इमेज बन जाए, कोई बुरी इमेज बन जाए। तो वहां भी अपने कर्म पर वो कितना ध्यान रखता है, तो एक तो मेहमान की हमको स्मृति रहे तो हम हमेशा उड़ते पंछी की तरह ऑलराउंड पार्टधारी बनकर सेवा करते रहेंगे। वापस घर जाना है ये स्मृति रहे, बिना सामने खड़ा है ये स्मृति रहे, तो भी हम ऑलराउंड पार्टधारी बन सकते हैं। और कौन सी स्मृति रहे, चार प्रकार के नशे कौन से, वो जो संडे के मुरली में थे कौन कौन से थे, एक है क्योंकि नशा होगा तो भी हमारी सेवा प्रगति और उड़ती कला का भी अनुभव होगा, तो कौन कौन से नशे थे, अशरीरी आत्मिक रूहानी वृत्ति का नशा, और दूसरा अलौकिक जीवन, ये हमारा अलौकिक जीवन है, ब्राह्मण बने हम किस लिए हैं, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम मर्यादाएं हैं, क्या उनका स्टेटस है, क्या उनकी स्मृतियां होनी चाहिए, कैसे उनकी स्थिति होनी चाहिए, कैसे उनके कर्म होने चाहिए, कैसे उनके बोल होने चाहिए, वो सारी अलौकिक जीवन की अगर हमको स्मृतियां रहती हैं तो भी हमारा जीवन एक उड़ते पंछी की तरह रहेगा। और तीसरी कौन सी बात बताई थी, फरिश्तेपन की अवस्था, तो फरिश्तेपन की अवस्था, फरिश्ता अर्थात हमेशा उड़ती कला वाला फरिश्ता अर्थात, कल बताया था ना, लिखना, सभी ने लिखा होगा, लिखा सभी ने, तो आज फिर लिख लेना कोई बात नहीं, स्वतंत्र पंछी, तो फरिश्ते की तरह हम हमेशा हल्के रहे। फरिश्ता अथक होता है, मैसेंजर होता है, इससे लगाव नहीं, अटैचमेंट नहीं। और चौथी कौन सी अवस्था थी, भविष्य और वर्तमान। बाबा ने कहा इन चारों नशों में से एक भी नशा रहे तो भी क्या होगा, खुशी रहेगी, तो भी नशा रहेगा, खुशी रहेगी और उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। तो ये भी बातें हैं। और कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हमारा मन निर्बंधन बनता जाए, क्योंकि वास्तव में हम सबका पुरुषार्थ अंतिम यही पुरुषार्थ है कि मन सबसे एकदम डिटैच हो जाए इस स्वयं की प्रवृत्ति से। जब बताया ना आज के प्रदान में चार बातें, कौन सी थी, एक स्व की प्रवृत्ति से भी, दूसरा सेवा की प्रवृत्ति, माना सेवा में हमको सफलता मिलती है बहाना मटक जाए, सेवा से भी एकदम उपराम नष्ट मोहा, आज के प्रदान में था ना नष्ट मोहा, तो सेवाओं की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, सेवाएं खींचती हैं, क्योंकि सेवाओं के क्षेत्र में जब सफलता मिलती है तो मान शान चारों तरफ से हमको बरसने लगता है, उस मान शान की मुक्ति के लिए, क्योंकि अंदर में सूक्ष्म अहंकार जागृत हो जा रहा है, फिर उस अहंकार से मुक्त होने के लिए भी हमको ये अटेंशन रखने की जरूरत है। तो हम सेवाओं की प्रवृत्ति में हम उनसे अटैच रहे, डिटैच रहे, अटैच नहीं। और चौथी कौन सी थी, दैवी परिवार, है ना, परिवार लौकिक वाला तो छूट गया है, तो है भी अभी भी उससे थोड़ा तो अटैचमेंट होती है, लेकिन अभी अलग तरीके से होती है ना, कौन से तरीके से, है तो कल्याण के तरीके से, लेकिन उस कल्याण में अटैचमेंट भी समाई होती है ना। बाबा ने कहा ना कई बार कहे कि अपने घर वालों का सोचते, देश वाले का क्यों नहीं सोचते, गांव की आत्माओं का क्यों नहीं सोचते, केवल अपने घर का ही क्यों सोचते हो, सोचना तो बेहद का। वास्तव में कई बार ऐसे होता है कि अपने परिवार की समस्या ध्यान तो देना होता है, ऐसा नहीं देना है, लेकिन परिवार की समस्याओं को हम अपना समझ के बैठ जाते हैं। जो पड़ोस की समस्या उस समय हम अपना इतना अटेंशन नहीं देते हैं क्योंकि पड़ोसी की समस्या है। अगर पड़ोसी की समस्याओं को भी अपना समझ के समाधान करेंगे तो जो हमारे जीवन में आने वाली समस्या है या हमारे लौकिक परिवार में आने वाली समस्या है तो भी उनसे हम पार कर सकते हैं उनको। जब हम दूसरे की समस्याओं को दूसरे समझते हैं तो हमारी अर्थात कहां ना कहां अटैचमेंट है, हमारी बेहद की सेवा है। आज की मूल्य में भी बेहद शब्द बहुत बार है, कौन कौन सा? बेहद की सेवा, बेहद का वर्षा, बेहद का बाप, ये सब गुप्त है बाबा ने कहा। तो बेहद का हमारा दृष्टिकोण हो तो भी हम उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। और चौथी कौन सी बात थी? हद की प्राप्तियां, क्योंकि प्राप्तियां तो बाबा ने कहा अंत में लाइनें लगेंगी आप सबके सामने, उसमें फंस जाएंगी। तो हमको देखना है कौन कौन सी प्राप्तियों में हम फंस रहे हैं। छोटी छोटी प्राप्तियां हैं, बड़ी बड़ी प्राप्तियां भी हैं, चाहे वो स्थूल साधनों के रूप में है, चाहे वो मान शान के रूप में है, चाहे वो सफलता के रूप में है, कहीं ना कहीं वो प्राप्तियां हमें हमारे लिए ही बाधक बन जाएंगी। तो उनसे भी हमको नष्ट मोह उपराम रहना है। तो चार प्रकार की प्राप्तियां हैं। तो हम देखेंगे कि ऑलराउंड पार्टधारी बनने के लिए कौन कौन से गुण चाहिए हमारे में ताकि हम सब प्रकार की सेवा कर सकें। और वो विशेषताएं तो हम सबके अंदर है, जैसे बाबा ने बताया ना, जैसे बाप भी ऑलराउंड पार्टधारी बन जाते, कौन सा? यहां संबंधों के रूप में बाबा ने बात की है कि बाप सखा भी बन जाते, बाप भी बन जाते और फिर दूसरे संबंधों से भी निभाते हैं। तो ऐसे हमारे में कौन कौन से ऐसे गुण होना चाहिए कि हम ऑलराउंड पार्ट प्ले कर सके? सीखने की ललक, सबसे पहली बात तो ये भी है कि हमको सीखने की ललक चाहिए, गुण ग्राहकता चाहिए, हर एक से गुण सीखें हम, गुण उठाएं और देखें कि जिस व्यक्ति में पहले वो विशेषता नहीं थी जो विशेषता भी सेवा में लगा रहे वो कहां से आई। तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे तो है ना, उसके अंदर सीखने की ललक है, एक जोश है, एक जज्बा है अंदर में, ताकि उसको अपने जीवन को सफल करना है। तो उसने कैसे सीखा ये भी सीखना है। और सीखने की ललक, जब किसी को कोई सेवा दी जाती है और उस सेवा के बारे में हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो निमित्त आत्माएं वो सेवा की जिम्मेवारी सौंपती हैं और वो सामने से हांजी कर देता है तो वो विशेषताएं स्वतः भी निर्माण होने लगती हैं। क्योंकि पहले भी कई बार बताया ना, अगर हम कई बार मना करते हैं किसी चीज को तो अंदर में पहले से नेगेटिव एनर्जी शुरू हो जाती है, पहले से फिर वो संस्कार धीरे 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 निर्माण हो जाते हैं, पक्के संस्कार हो जाते हैं। फिर जब भी हम कोई दूसरा कार्य देगा तो हम मना करेंगे और फिर वो अपने बुद्धि भी उतनी चलेगी नहीं, क्योंकि हमने मना कर दिया तो एक निश्चिंत नेगेटिव भाव से निश्चिंत की अवस्था हो जाती है कि हमको तो करना नहीं है, हमने तो मना कर दिया। तो और मना करेंगे तो फिर दूसरे दूसरे कामों में लगे रहेंगे, बिजी रहेंगे, क्योंकि इस तरफ से छूट गए। तो हमको मना नहीं करना है, हांजी करना है। अगर मना करेंगे तो जो किसी को टॉपिक दिया जाता है ना, दूसरा काम करके चले जाता है। हमने किसी को, एक भाई को बोला क्लास के लिए, को बोला था परसों, हमने बोला था भाई आप क्लास करा दो, तो अन बोला कल करा दो, तो मैं बोला चलो ठीक आज ही करा दो, अच्छा है, बोले नहीं कल कराएंगे, तो मैं बोला ठीक है। तो जब रात को जिसने क्लास कराई उस दिन, उनका टॉपिक वो करा के चला गया, इन्होंने फिर दूसरा तैयार करना पड़ा। तो कल के लिए फिर मना कर रहे थे, मैं बोला देख लो आज भी खतरा है, अगर आज भी मना करे तो दूसरा करा के चला जाएगा, बोले तो ठीक है आज ही करा देते। तो मना करने से फिर अनेक प्रकार के, देखो मना तो किया उन्होंने, किया भी नहीं लेकिन पोस्टपोन कर दिया, लेकिन उस पोस्टपोन में तो अपना माल पानी चिंतन चलेगा ना सारा। बोला वो सारी की सारी क्लास करा के चलेगी, डबल फायदा हो गया। तो तो ये देखना कि हमको मना नहीं करना, एक हांजी का पाठ, और ये हांजी का पाठ हम अपने चिमन भाई से सीखते हैं हमेशा। हांजी कोई भी है, चाहे वो वीके है, नॉन वीके है, कोई भी है, कैसा भी है, कोई धर्म जाति पाति जी कोई लेना देना नहीं, एकदम सब चीजों से ऊपर उठे हुए हैं, हमेशा हांजी है ना। कल भी एक एग्जाम्पल बता रहे थे रात को क्लास में कि जगदीश भाई जी ने एक बोला था हॉस्पिटल के बारे में कि जो भी हॉस्पिटल में हम सेवा करते हैं तो सेवा करने से पहले क्या 10 मिनट याद में बैठ सकते हैं? तो किसी ने मना कर दिया, तो बोला नहीं ये नहीं हो सकता है। चलो नहीं हो सकता एक अलग बात है, लेकिन हम उस समय मना नहीं करें, हाँ हम करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो एक हांजी करते तो धीरे धीरे वो टाइम निकलता है, हमने पहले से वो मना करने के बीज बो दिए तो फल भी वैसा निकलेगा, वो एटमोसफेयर भी वैसा क्रिएट होगा, सभी के मानसिक स्थिति, सभी के संकल्प भी वैसे चलेंगे, सभी वैसे वातावरण भी वैसा बन जाएगा। तो हम किसी भी चीज को मना करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हमेशा सबसे पहले हमको हांजी का गुण, ये हांजी का पाठ पक्का करना है। हमने हांजी कर दिया, जितने अपने कार्य क्षमता के अनुसार या अपनी जो अंदर ताकत है समर्थ है उसके अनुसार हम जितना भी सेवा करते हैं उतना तो होगा ना, और उतना होगा तो धीरे धीरे फिर बढ़ता भी जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो सामने वाला, अगर हम हांग करते तो सामने वाला सोचेगा कि ये रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, तो आगे भी फिर हमको प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए। अगर हमने पहले ही मना कर दिया तो फिर आगे बार कई बार सोचना पड़ता है अब इस व्यक्ति को बोले या नहीं बोले, है ना। ऐसे हम कई बार देखते हैं किसी को अगर थोड़ी सेवा भी होती है अगर कोई मना करता है तो देखते हैं फिर वो संस्कार पक्के होते हैं और संस्कार छूटते नहीं है फिर। इसलिए स्थूल रूप से भी हमको कई चीजों का अपने ऊपर नजर रखने की जरूरत पड़ती है कि हमको एक तो अगर सेवा में ऑलराउंड पार्टधारी बनना है तो एक तो हांजी का पाठ, और कौन सा गुण, निर्माणता, नम्रचित, निरंकारिता जिसको कहेंगे, तो ये निर्माणता भी बहुत कार्य करती है। जितना हम नम्रचित होकर सेवा में संलग्न होते हैं, सेवाओं के क्षेत्र में उतरते हैं, उतनी सफलता भी मिलती है और उस सफलता में सुख समाया जाता है, और सफलता के पीछे अनेक आत्माओं की दुआएं होती हैं जो दुआएं हमारे जीवन को, हमारे पुरुषार्थ को ऊपर उठा देती है, ऊंचा उठा देती हैं। तो एक नम्रता का गुण भी होना बहुत आवश्यकता है। जितना हम निरंकारी होकर सेवा करेंगे उतना ही हमारे में अनेक प्रकार के गुण और आते जाएंगे। अगर हमें अहंकार आ गया स्वयं की विशेषताओं पर, स्वयं के गुणों पर, तो हमारा विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, उसकी प्रगति नहीं हो पाती है। तो एक ये नम्रता का पाठ, हांजी का पाठ, निरंकारिता का पाठ, ये हमको पक्का सीखना है। और कौन कौन से गुण हैं जिससे हम ऑलराउंड पाठधारी निर्बंधन बन सके, सरलता होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं सेवाओं में ऐसे होता है किसी ने अगर कुछ बोल दिया है और हम अपना मुंह फुला के कुप्पा करके बैठ गए और सहन नहीं किया, उस समय हमने जवाब दे दिया है किसी को, तो सामने वाला भी सोचता भी ये तो फिर सेवा के है ही नहीं, वो भी चला देगा फिर, तो सेवा किसी दूसरे को दे देंगे और हमारे में सहन शक्ति फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी और हम दूसरे को जवाब देना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की हमको जीवन में परिस्थितियां आती हैं तो उनमें सहन शक्ति भी हमको अपने आप में मजबूत करना। उसमें बाबा ने कहा एक भी गुण धारण कर लो बाकी सारे पीछे आ जाएंगे। अगर हम सहन शक्ति भी धारण कर लेंगे तो बाकी सारी शक्तियां हमारे पीछे पीछे कार्य स्वतः करेंगी। तो सहन शक्ति भी होना जरूरी है। और कौन से गुण होने चाहिए, संतुष्टता। संतुष्टता, हाँ, कहां थोड़ा मिले सेवा के साधन या जितने भी हो, ऐसे नहीं, कई बार साधनों का भी हम अपेक्षा ज्यादा रखते हैं, ये साधन होगा तो हम सेवा करेंगे, ये लोग साथी होंगे तो हम सेवा करेंगे। तो अनेक प्रकार के ऐसे जीवन में आते हैं जो साधनों का भी हम अपने आप एक अंदर से इच्छा रखते हैं। तो संतुष्टता जो हमारे पास है, चाहे वो स्थूल साधन है चाहे वो सूक्ष्म साधन है। सूक्ष्म साधन कौन से, तो बाबा बताते हैं संडे की मुरली में, साधनों को भी किसके आगे रखो, हाँ, देवियों के आगे रखने हैं। उसमें क्या होगा फिर वो, हाँ, तो सवेरे सवेरे बहनों के आगे साधन नजर आते हैं कि नहीं, किसी को किसी ने रखे कि नहीं अभी तक। तो जो स्थूल सूक्ष्म साधन है इनमें हमको शक्ति भरनी है। और सूक्ष्म साधन कौन से है, बुमारे दृष्टि, वृत्ति, कृति, मनसा, बाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, ये सूक्ष्म साधन है। तो इसमें भी हमको डेली बाबा से शक्ति भरनी है। देवियों के आगे ही बैठ सकते हैं सूक्ष्म रूप से, स्थूल से तो थोड़ा देखेंगी देवियां, तो सूक्ष्म रूप से हम अपने जो सूक्ष्म साधन मिले हमको सेवाओं के लिए, तो इनमें हमको स्वयं में अंदर शक्ति भरनी है। तो ये बताया माता जी ने सहन शक्ति होनी चाहिए, तो अनेक प्रकार की शक्तियां आती जाएंगी। और क्या होना चाहिए ताकि जीवन में हम चक्रवर्ती ऑलराउंड पार्टधारी बन सके और निर्बंधन हो सके, अथकपन, अथक सेवा में कोई भी सेवा मिलती है तो हमको उसमें अथक होके लगे रहें, बहानेबाजी नहीं दें। जैसे बताया था ना उस दिन अमित भाई ने क्लास कराई थी, बहानेबाजी ने एक प्रकार की बहानेबाजियां देते हैं और कई जेन्युइन भी होती हैं, लेकिन जेन्युइन बहानेबाजी भी फिर उसमें वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो कहीं जिसको जो ऑलराउंड पार्टधारी होगा कहीं ना कहीं से समय चुरा के एक सेवा कर ही लेगा, सबके साथ एडजस्टमेंट होके चलेगा। अगर 10 व्यक्ति भी काम बता देते हैं तो 10 का निपटा देगा वो। जैसे घर में एक माँ होती है, गृहिणी होती है, तो कैसे घर के सारे काम करती है वो बहानेबाजी देती है, उसका बच्चा भी होगा, उसका पति भी होगा, उसके ससुर भी होगा, सास भी होगी, तो सब चीजों को कैसे संतुष्ट करती है। जो एक अच्छी गृहिणी होती है वो सबको एकता के सूत्र में बांध के रखती है, वो एक एग्जाम्पल होती है। तो इस गृहिणी से भी सीखने की हमको जरूरत होती है, तो वो एक ऑलराउंड पार्टनर होती है ना। तो जैसे कंप्यूटर में काम करते हैं तो एट ए टाइम कई काम चलते रहते हैं, है ना, उसी तरह से हम ऑलराउंड पार्ट अगर हमको प्ले करना है तो सारे काम अगर हम हमेशा हां जी का पाठ पक्का करते जाएं और सेवाओं में सीखने की हमारी अंदर से इच्छा हो और गुण ग्राहक हो, सबकी विशेषताएं देखें, गुण देखें, तो स्वतः सारे काम ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। कहां किसको कहां किस समय कितना देर समय देना है, किसके साथ कैसे बोलना है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा समय है उसको हमको कैसे सफल करना है, तो स्वतः वो ऑटोमेटिकली हमारे रास्ते खुलते जाएंगे। स्वतः एक नए नए आइडिया अपने आप क्रिएट होते जाएंगे, हमारी बुद्धि स्वतः खुलती जाएगी कि कहां हमको किसके साथ कैसे बोलना है, डीलिंग करनी है या किसको समय पर सहयोग देना है। तो ये है कि अथकपन होंगे, तो अथक होकर हम ये चीजें हमारे जीवन में स्वतः आती जाएंगी। और सेवा के साथ याद आ कर्म योग का बैलेंस दोनों, तो कर्म करते हमारा योग स्वतः लगा रहेगा तो भी हम निर्बंधन होते जाएंगे धीरे धीरे। अटेंशन रहेगा स्वयं के ऊपर। और हम करेंगे तो हमें देख के और करेंगे, क्या करेंगे हम करेंगे क्या। हाँ हाँ, बाबा ने कहा ना तुम अकेले नहीं, तो जो मुरली शांतिवन में चली है ना 20 तारीख को, कौन सी थी, क्या क्या था उसमें, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे पीछे कौन कौन है, रॉयल फैमिली है, प्रजा है, और भक्त कौन से हैं, तीन प्रकार के, सतो रजो तमो भक्त, तो वो सब देख रहे हैं। तो जो कर्म हम कम करेंगे, अब तो बात इससे भी आगे निकल चुकी है, कौन सी, बाबा ने कहा जो संकल्प हम करेंगे वही संकल्प दूसरे करेंगे। तो ये हमको भी कि हम आधार मूर्त हैं, पूर्वज हैं, हम सबके आगे स्टेज पर थे, संडे के टीचर बन के मुलाकात थी ना, तुम टीचर स्टेज पर हो है ना, तो स्टेज पर सबकी नजर रहती है कि कौन कैसे कर रहा है। तो जो कर्म हम कर्म करेंगे या जो संकल्प हम करेंगे उसके अनुसार ही सब बाकी आगे करेंगे, तो ये भी हमको अटेंशन रखनी है। तो ये भी एक ऑलराउंड पार्टदारी बनने में एक समृद्धि है, समर्थ बनाती है, जो हम कोई भी निर्बंधनों से निर्बंधन करती है, बंधनों से मुक्त करती है। और ऐसे कौन सी गुण होने चाहिए हमारे में ताकि हम निर्बंधन बनते जाएं, हाँ जी, समर्पण बुद्धि। हाँ, एक बार माना समर्पण हो गए, सिर ओखली में दे दिया तो फिर मुसलों किससे क्या डरना, फिर पीछे मुड़के नहीं देखने का है ना, फिर डरने का नहीं है, फिर क्या होगा कैसे होगा। जब सरेंडर हो गए तो उसके हाथ में हमारा जीवन है, तो क्यों नहीं वो नैया पार करेगा, अगर नैया पार नहीं भी हो तो भी फिर उसी का ही है सारा, क्योंकि उस संसार देखेगा कि इसने भगवान के आगे जीवन अर्पित किया है ना। जैसे अंगद ने पांव गड़ा दिया तो किसकी इंसल्ट, अगर पांव हिल देता तो राम की इंसल्ट, सीधी सी बात है। तो हमने जीवन समर्पण कर दिया, जो है अच्छा बुरा जो सब संभालेगा। तो समर्पण बुद्धि अगर हम होकर रहेंगे तो बाबा हमेशा हमारी मदद करने के लिए बंधा हुआ है ना, तो समर्पण बुद्धि। और समाने की बुद्धि, समाने की शक्ति, हाँ समाने की बुद्धि। और काल बुद्धि थी कौन सी, 50% वाली, हाँ जो पारस बुद्धि होंगे उनके कितने मार्क्स होंगे, 50% से ऊपर। तो जो 50% नीचे होंगे वो कौन सी बुद्धि होंगे, राम बुद्धि, नहीं पत्थर तो बोला नहीं बाबा ने, पत्थर तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगी, पत्थर बुद्धि तो थे पहले अभी। तो ये है कि समर्पण बुद्धि होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए, होश में रहना, बेहोश नहीं होना, अर्थात विस्मृति की नींद नहीं हो है ना, हमेशा हमको जागृत रहे कि हम ब्राह्मण बने क्यों हैं, इस ब्राह्मण लाइफ में हमने कदम रखा है तो हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, क्या उन हम कर्तव्यों के अनुसार या जो श्रीमत के अनुसार बाबा की सेवा के अनुसार हम चल रहे हैं। तो हमेशा हमको जागृति रहनी चाहिए, जागती ज्योत रहनी चाहिए, जैसे बाबा हमेशा जागती ज्योत हैं वैसे हम उसके बच्चे भी सदा जागती ज्योत बनकर रहे हैं, है ना। ऑलराउंड पार्टदारी हम देखा, जो बर्मा की बहनें आती हैं इधर, तो जो जितना पूरा मकान है ईंटें भी खुद उन्होंने अपने हाथों से बनाई है, बर्मा की बहनें, पूरा दीवार उन्होंने खुद, कारपेंटरी का काम थोड़े बहुत भाई लगाए, लेकिन अधिकतर सारा का सारा भवन निर्माण उन्होंने खुद अपने हाथों से किया है। तो ऑलराउंड पार्टदारी का भी बहाना नहीं देंगे कि हमको कहीं से हेल्प नहीं मिलती है, चल पड़ेंगे, वो अपने आप हेल्प पीछे दौड़ेगी, अपने आप सफलता आगे तक परछाई की तरह पीछे दौड़ेगी। अगर हमारे भी दृढ़ता है तो सफलता ना हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो सफलता के द्वार अपने आप खुल जाते हैं, अनेक प्रकार के आइडिया क्रिएट अपने आप होने लगते हैं, जहां हमारी इच्छा है कि हमको सेवा करनी है किसी ना किसी तरीके से। और सेवा तब होती है जब उस सेवा को हम अपना समझते हैं, जब तक अपनापन नहीं है तब तक उस सेवा में हमारा उतना अटेंशन नहीं रहता, उतना उमंग सा नहीं रहेगा, उतना उसके प्रति अलवेलापन रहेगा, आलस्य रहेगा। जब हम उस सेवा को अपना समझेंगे तो स्वतः सेवा किसी न किसी तरीके उस सेवा को हम करने लग पड़ेंगे, तो सेवा अपनी है। बाबा ने कहा किसी का दुख भी अपना दुख समझेंगे तो उसको दुख से मुक्त कर सकेंगे। और कौन सा गुण होना चाहिए? उमंग और उत्साह। उमंग उत्साह के पंख सदा मजबूत होंगे तो भी उड़ता पंछी बनकर ऑलराउंड पार्ट प्ले कर सकेंगे। उमंग उत्साह, याद और सुविधा, कर्म और योग का बैलेंस और इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ, अनेक प्रकार की इच्छाएं भी हैं जो हमारे मन को बांध के रखती हैं, तो उन इच्छाओं से भी हमको मुक्त होना है। कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं वो भी हमको देखना है। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं होती है, पड़ी रहती है ऐसी, तो वो भी हमने इच्छा पाल के रखी है और है नहीं है, अगर दूसरी मिल रही है तो उसके लिए भी हम और इकट्ठा करते रहते हैं। चाहे हम लौकिक में रहते हैं, अलौकिक रहते हैं, सेवा के अंदर पर रहते हैं, कहीं भी है, इच्छाएं तो सबके अंदर होती हैं। तो हमको देखना है कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनकी जरूरत ही नहीं है, जिन चीजों के बिना हमारा जीवन चल रहा है, और वो चीजें कई सालों साल ऐसे पड़ी हुई हैं क्योंकि वो चीजें भी हमारे मन को बांध के रखती हैं। जो भी हमारे आसपास में सामान है या जितने भी जहां तक भी हमारी दृष्टि जाती है, ये सब हमारे मन को बांध के रखे हुए हैं। तो भी हमको देखना है कहां कहां हमारी नजर जाती है, जो चीजें हमारे मन को बांध के रखती हैं उनसे भी निर्बंधन होना है। दान कर देना, उन चीजों का दान कर देने का जो जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है, जितना दान करते हैं उतना और आता है। हमने करके देखा है, अगर किसी को एक चीज देते हैं चार चीजें और आ जाती हैं, इसलिए आता नहीं है क्योंकि वो सामने वाले देखते हैं कंजूस आदमी है ये इसलिए देते नहीं है। तो अगर आप देंगे नहीं तो आप दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप एक चीज देंगे और आपके पास चार चीजें आएंगी तो आप चार लोगों को बांटेंगे और वो चार लोगों की जीवन की आवश्यकताएं पूरी होंगी और चार लोग और सेवा में लगाएंगे और फिर आठ फिर आऊंगा, तो सफलता होगा ना, तो सफल हो गया है। तो किसी भी दृष्टि से हम किसी भी बात को देख सकते हैं, लेकिन हमारी देने की संस्कृति है ना, भारतीय प्राचीन संस्कृति कौन सी है? दान करने की संस्कृति। हम दातापन के बच्चे हैं, तो इधर से लिया इधर से दिया है ना, तो ऐसे तो फिर बाबा भी नहीं ले, जो जितना बाबा के यज्ञ में सफल करे तो कैसे सफल होगा तो ये है कि हमको देने की भी हमारे अंदर होनी चाहिए चीज। और कैसे हम निर्बंधन बने, कैसे उड़ता पंछी बने? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो बाबा ने पहला नशा बताया अशरीरी पन्ने का नशा है ना, और जो कल बताया तो जो आठ बातें बताई थी कि जो हम रिकॉल करते हैं किसी ज्ञान को, कोई भी हम मुरली सुनते हैं तो रिकॉल करते करते हमारी जो अवस्था है वो एकदम अशरीरी हो जाती है, आत्मनी होती है, क्योंकि ज्ञान निराकार ज्ञान है। और जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो हमारा ध्यान देह के संबंधों की तरफ या देह के तरफ या देह के पदार्थों की तरफ स्वतः कम हो जाता है एकदम, है ना। तो ज्ञान को बार बार रिकॉल करना है, उसको बार बार चिंतन करना है, देखना है, सुनना है, समझना है, है ना, तो अपने आप ही अवस्था ऊपर उठेगी और हम चुस्त रहेंगे, चुस्त फुर्त रहेंगे, स्फूर्ति बनी रहेगी, नहीं तो सुस्ती आती रहेगी, है ना। कल कौन सी आठ बातें बताई थी इधर? अगर वो आठ बातें बुद्धि में रहेंगी और माया जब आएगी तो एक ही आवाज निकलेगी, कौन सी? इस रूट की लेनी रहते तो कौन सी आठ बातें बताई थी काली तो बताओ, आठ इंटू पांच पांच फोर्टी। हाँ, किस किस ने किया वो? हाँ, बहुत सिंपल, हम वैसे 12 बातें करते थे, 8 कर दी, बहुत अच्छा हो गया। हाँ, बढ़ा सकते हैं लेकिन 8 फिर भी ठीक है। और देखो 5-5 मिनट भी करो एक एक बात, 40 मिनट ऐसे बीत जाते हैं। तो पहले थी कौन कौन सी 8 बातें? वो सबसे पहले थी 5 कर्मेंद्रियों को सकाश देना, है ना। तो और उससे पहले और भी कर सकते लेकिन 5-5 का दल था तो जत्था था तो 5 कर्मेंद्रियों को सकाश देना, स्वयं के कर्मेंद्रियों को एकदम शांत कर देना है। और दूसरे 5 क्या थे? प्रकृति के 5 तत्व, उनको सकाश देना है। देखो एक एक तत्व को 5-5 मिनट दो तो फिर, हाँ 5, फिर महाद्वीप है ना, 5 खंड जे थे, और नेक्स्ट 5 प्रकार की आत्माएं, कौन कौन सी? नहीं वो दूसरा है, वो तो दूसरी ब्रांच है, ब्राह्मणों की ब्रांच दूसरी है, एक गैर ब्राह्मणों की ब्रांच थी, कौन कौन सी थी? दुखी, अशांत, कोई भी बना लो, भटकती, तड़पती, अतृप्त, प्यासी आत्माएं हैं, हाँ, तो ये पांच प्रकार की आत्माएं हैं, हैं? क्या हुआ? हाँ, डॉक्टर भी आ जाएगा वो मधुबन में आएगा। तो ये पांच हो गया, फिर पांच और क्या था? पांच प्रकार की सत्ताएं, कौन कौन सी? धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता, ज्ञान सत्ता, नॉलेजफुल की सत्ता, और पांचवी प्रकृति की सत्ता। तो पांच सत्ताएं, पांच चीजें होंगी। और पांच क्या था? पांच प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं, और पांच, पांच ये मधुबन के ब्रांचेस जो बताया था, और पांच लास्ट में विकारों को भस्म करना है, पांच प्रकार। तो देखो, जितना समय हम अपने बुद्धि को इन बातों में बिजी रखते हैं तो स्वतः माया से मुक्त हो जाते हैं, निर्बंधन हो जाते हैं, और मन में एक अलग से शक्ति निर्माण होती है, शक्ति बढ़ जाती है, और हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ने लगता है। जब हम देखें कल की चीज हमको याद ही नहीं आई तो हम सोचेंगे याद तो रहता नहीं है, क्योंकि याद किया ही नहीं है। उसको लिखो, उसको पढ़ो बार 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 बार, क्यों नहीं आठ चीजें याद होंगी, और धीरे 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 शक्ति बन जाए, और पुरुषार्थ में इंटरेस्ट बढ़ेगा, नहीं तो इंटरेस्ट ही नहीं बढ़ता है। फिर वो प्रश्नों की हम बाहर लगे ही रहते हैं, ये कैसे करना पुरुषार्थ, अभी पुरुषार्थ ही तो कर रहे हैं सारा, वो क्या है। तो इस जो भी हम करते हैं उसको बार बार रिकॉल करना है, कौन कौन सी मुरली में बातें थी, कल की मुरली में, आज की मुरली में बाबा ने चार गीत याद किए, कौन कौन से थे मुरली में चार गीत बहन जी? सबसे पहले जाग सजनिया जाग, दूसरा नैन इनको राह दिखाओ प्रभु, तीसरा जो बाबा ने बनाया हुआ गीत बाबा के टाइम में, कितना मीठा कितना प्यारा शिव बोला भगवान, और चौथा, चौथा गीत लास्ट में है कोई सुजा राजकुमारी नहीं, सोने से पहले चौथा गीत है ये नहीं है, वो लास्ट पेज में है, मुरली के लास्ट पेज में। तो ये गीत क्या क्या बाबा ने नए नए शब्द कहे, बाबा ने कहा ऐसे गीत वालेंगे जो तुमको एकदम घायल कर देंगे। तो देखो गीतों की बात है, कभी कभी बाबा गीतों को उड़ा देते हैं। तो ऐसे हम अलग अलग तरीके से पुरुषार्थ करते रहे तो निर्बंधन हो जाएंगे। हाँ, गीतों का अर्थ, अर्थ सहित अर्थ खुद भी सोचो फिर दूसरों को भी समझाओ। हाँ, तो फिर देखो नए नए तरीके से मुरली को याद करेंगे तो निर्बंधन बन जाएंगे, और फिर और रूढ़ता पंछी भी बन जाएंगे, क्योंकि सेवाओं की युक्तियां मिलती हैं बीच में उसमें, और फिर इंटरेस्ट भी रहेगा। अगर मुरली को हम सही तरीके से नहीं सुनेंगे तो शक्ति भी नहीं बढ़ेगी, और सेवा में उतना मजा नहीं आएगा। सेवा करेंगे लेकिन उस सेवा में फिर स्वार्थ समाया होगा, उस सेवा में कहीं ना कहीं मान शान समाया होगा। इसलिए ज्ञान को रिकॉल करना बहुत जरूरी है। और कौन सी ऐसी बात हो सकती है जिससे हम निर्बंधन बन जाए? बंधन में तो पहले से हैं वो लड़ी अच्छा, जो नया बंधन क्रिएट नहीं करें, वैराग, बेहद का वैराग्य। वैराग्य कैसे आएगा? मेन तो बात वही है, वैराग्य आ गया तो सब कुछ ही हो गया हाँ, बुद्धि में अंतर सदा रहे, सत्य सत्य नित्य अनित्य, ज्ञान भक्ति, अनेक प्रकार के अंतर है, अंतर स्पष्ट है। तो फिर और इस अंतर का याद करने के लिए मंत्र चाहिए, कौन सा? मन मना भाव मध्य जीव का। हाँ, तो अंतर हमेशा हमारी बुद्धि में, और वैराग्य हम पिछले जीवन का देखें, क्या थे और क्या बना दिया। अद्र कुमारों से मुलाकात थी संडे की, मुरली बाबा ने कहा था क्या थे और क्या बन गए, सोचिए जरा, अगर आज हम इस ब्राह्मण लाइफ में नहीं होते तो क्या क्या होते, कहां कहां से आए हैं ब्राह्मण आत्माएं, तो कहां पड़े पड़े होते आजकल। बाबा ने कहा गंदे नाले में पड़े होते, कहां से डिब्बे से उठाया, और क्या क्या था हमारे में, विशेषता तो थी नहीं, एक भी गुण नहीं था, बिल्कुल एकदम नालायक बन गए थे, बंदर बुद्धि बाबा जो कहते हैं। तो सोचने सोचने पर वो हमको वैराग्य जागृत होगा सचमुच, और कहीं ना कहीं वैराग्य हमारा जो खंडित होता है तो जो भी स्थूल सूक्ष्म रूप से अटैचमेंट रहती संबंधों से, तो थोड़ा थोड़ा डिटैच रहना, उनको छोड़ देने का, क्योंकि सब आत्माओं का पार्ट अपना अपना है। कहीं ना कहीं हम लौकिक रिश्ते नातों में बंधे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा हम सोचते हैं हम जाएंगे तभी उनका कल्याण होगा, कल्याण स्वतः हो जाएगा उनका। अगर उनको हमारे प्रति कुछ है तो यहां आके उनको शफा लेनी चाहिए ना, उनको भी देखना चाहिए ना इनका जीवन, हम उनके जीवन के पीछे क्यों पड़े, वो हमारे जीवन के पीछे पड़े ना, हमने भगवान का हाथ पकड़ा है, हम उनका हाथ क्यों पकड़े? अभी सारे क्लब में हाथ तो अभी मिलेगा, फिर तो जिंदगी भर उन्हीं का हाथ पकड़ना है पूरे क्लब भर, तो कम से कम थोड़ा सा समय है, इसका प्यार अनुभव अभी नहीं किया तो फिर कब करेंगे? तो इसका जोर से हाथ पकड़ेंगे तो उन सबका हाथ भगवान स्वयं पकड़ लेगा। इसलिए छोड़ देना, कोई हमारी सुने नहीं सुने, ज्ञान में चले ना चले, छोड़ दो, सबका पार्ट अपना अपना है। हाँ, अगर ये भी है ज्ञान में अगर कोई चलता है रिश्तेदार हमारे लौकिक, फिर हम और ही उसके पीछे पड़ जाते हैं ज्यादा, फिर वो ये होता है कि हमारे अनुसार उसको चलना चाहिए, और थोड़ा भी उसने ऊपर नीचे कर दिया तो फिर हम उसको पाठ पढ़ाने लग जाएंगे, और बेचारा वो उस दुनिया से भी गया, इस दुनिया से भी गया, तो छोड़ देने का भी। हाँ, हमारी शुभ भावना सूक्ष्म रूप से जितना हम डिटैच होंगे वो सतह डिटैच होगा, जो बताया ना जैसा कर्म हम करेंगे तो वो कर्म के अनुसार उसका प्रभाव, उसके वाइब्रेशन स्वतः उसको इफेक्ट करेंगे। जैसे हम संकल्प करेंगे उनके प्रति वो स्वतः होगी, तो सबसे पहले उनके प्रति नहीं अपने प्रति डिटैच बन के एकदम बेहद के वैराग्य संकल्प स्वतः उनको वैराग्य जागृत होगा। जितना समय हम उनसे दूरी बना के रखेंगे ना वो स्वतः अपने आप आ जाएंगे, अपने आप जितना न्यारा होंगे उतना प्यारा होंगे। और कौन सी ऐसी बात है जो निर्बंधन हो जाए? मर्यादाएं, मर्यादाओं को पकड़ के रखना है। जो भी ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं उनको बीच बीच में दोहराते रहना चाहिए, क्योंकि मर्यादाओं में जब हम कमजोर होते तो माया बीच में प्रवेश कर जाती है, और माया प्रवेश करती है तो फिर क्या क्या कर देती है वो तो हम सब अनुभवी हैं। तो मर्यादाओं को नहीं छोड़ना है ब्राह्मण जीवन की, चाहे वो स्थूल मर्यादाएं सूक्ष्म है। संघ के प्रभाव से बचने, बाबा कहते संग तारे को संग बोरे डुबोए, तो हमको संघ का ही ध्यान रखना है, मर्यादाओं को पकड़ के रखना है। मर्यादाएं हमारा श्वास है, अगर मर्यादाओं को ऊपर हम नहीं चलेंगे तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं है फिर, तो बाहर से है लेकिन अंदर से नहीं है, फिर खुशी नहीं रहेगी, नशा नहीं रहेगा, उमंग सा नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा ब्राह्मण जीवन का, फिर उधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे, रंगीन कपड़े भी उधर भी और इधर भी, है ना। हमने भी एक माता को इधर देखा कल सवेरे, अम्मा मृत्यु उधर जा रही थी, वो लोटा लेके कहीं जा रही थी, कल परसों कुछ त्यौहार था, वो लगता किसी मंदिर में जा रही थी सवेरे सवेरे, बताओ वो लोटा कांसे का पकड़ा हुआ था। तो ऐसे भी होता है, तो उधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, तो मर्यादाओं को अच्छी तरह से समझना है। हाँ जी, हाफ कास्ट ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण तो रहेंगे, ये भी आपकी शुभ भावना कामना है कि ब्राह्मण तो है लेकिन हाफ कास्ट ब्राह्मण है, लेकिन हमको फुल कास्ट ब्राह्मण बनाने की शुभ भावना कामना रखनी है, डबल ब्राह्मण है। और कौन सी ऐसी बात हो जो निर्बंधन बन जाए हम? हाँ, सबसे पहले तो हमको उन बंधनों का पता होना चाहिए और बंधनों को देखना है, स्वीकार करना है कि हाँ ये बंधन है, नहीं तो सोचते हैं नहीं ये तो ब्राह्मण जीवन के अनुकूल ही है, चलता है, पता नहीं किसने चलाया, अभी तक भी अनुसंधान जारी है उसका जिसने चलाया, तो देखना है किस किस चीज से हमको अपने अपने मन को बांधा हुआ है। और साक्षी होकर किसको देखना है? हाँ, साक्षी होकर चेक करना है अपने आप को। हाँ, प्रवृत्ति में साक्षी होकर रह सकते हैं कि पार्ट जिसका जैसा उसको वैसे देखना है। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक बोले, आपकी बात सहमत है, तो साक्षी होकर देखना। और हो गए निबंधन सारे, तो सोमान में हमेशा रहना है। हाँ, जागती ज्योत, तो बाबा कह रहे हैं जो सदा उड़ते पंछी होंगे उनकी निशानी क्या होगी? वे चक्रवर्ती होंगे, हर सेवा में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, वो फिराक में रहेंगे, कहां सेवा में जाऊं और थोड़ा पुण्य का खाता और थोड़ा जमा हो जाए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, ऑलराउंड पार्टदारी होंगे। उड़ती कला वाले ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा हो वहां पहुंच जाएंगे, जहां भी सेवा हो वहां अपने आप ही कदम पहुंच जाएंगे, उनकी सेवा बुलाएगी अपने आप, और हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त होंगे। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जो सेवा की आवश्यकता होगी उसमें पहुंच जाएंगे। हाँ, जैसे बाप ऑलराउंड पार्टदारी है ना, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते हैं, बच्चा भी बन सकते हैं। तो ऐसे उड़ती कला वाले जिसमें जो सेवा की आवश्यकता होगी उस समय वह पार्ट जा सकेंगे, इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। तो ऐसे हम सारे दिन में देख सकते हैं ऑलराउंड उड़ता पंछी की निशानियां क्या होती है, ऐसे 100 निशानियां निकाल सकते हैं धीरे धीरे। तो आज सब करना, एक तो कल वाले 8 काम करने हैं और 100 आज करने हैं, 108, ठीक है, इसमें बिजी कर रही है, शाम तक निर्बंधन हो जाएगा एकदम। हाँ, शाम तक कर्मती तो कल यहां दिखेंगे नहीं ऐसे। तो ये ज्ञान ना हमको निर्बंधन बनाने वाला ज्ञान है, ज्ञान तो हमारी धड़कन है, ज्ञान तो हमारी संजीवनी बूटी है, श्वास है, अगर हमें ज्ञान कोई नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारे जीवन में फिर रौनक कहां से आएगी, है ना। बाबा ने कहा बुद्धि में त्रावट होनी चाहिए, काल की मुरली में था ना, त्रावट होनी चाहिए, ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में चमकता रहे, आई की मुरली में था, चमकता रहे, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन से लेकर सारा तीनों लोकों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में चमकता रहता है, धंधा है। हाँ ये तो धंधा है ब्राह्मण जीवन में, दुकान हमेशा ज्ञान रत्नों की खुली रहे, पता नहीं कौन सा ग्राहक कब आ जाए और उसको मिले नहीं तो क्या हाल होगा बेटा, उसने अपेक्षा रखी है कि इसी के पास ये मिलेगा मटेरियल। जैसे हमारे विठल भाई हैं, वो जब तमाकू खाते थे तो बताया उन्होंने कि वो 40-40 पुड़िया जेब में रहती थी, तो कई बारी दुकान के में नहीं मिलती थी, लोगों को पता इसके बाद जरूर मिलेगी। तो हमारा धंधा भी ऐसे होना चाहिए, हमारा जेब जो सहयोग के नोट से भरा रहे, हमेशा कहीं ना किसी से देखो कि सूर्य की किरण यहां से जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ आशा तो यहां से तो मिल जाएगा जरूर। तो हमको ऐसा बनना है हमेशा ज्ञान हमारी खुली रहे, ज्ञान रत्न की। ओम शांति। हाँ जी,
मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं नील गगन के पास, मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं नील गगन के पार, जहां बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं बाह पसारे बाबा खड़े हैं गले लगाने लिए, नजरों से श्रृंगार करेंगे नूर बनाने लिए, दिल की बात दिल से करूं, दिल की बात दिल से करूं वो उन पर बलिहार, जहां बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं